Un momento. Okay. सदा अपने को बाप के स्नेही सहयोगी और सदा सेवाधारी आत्माएं समझते हो। स्नेही सहयोगी और सेवाधारी जैसे स्नेह अटूट है ना, परमात्मा स्नेह को कोई भी शक्ति तोड़ सकती है? असंभव है ना कि थोड़ा थोड़ा संभव है। यह अविनाशी स्नेह विनाश हो नहीं सकता। स्नेह के साथ साथ सदा सहयोगी है। किस बात में सहयोगी है? जो बाप के डायरेक्शन है उसमें सदा सहयोगी, सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी है और सदा सेवाधारी। तो बाबा स्नेह की, सहयोग की और सेवा की बात करते हैं। ये स्नेह कैसा है? टूट है, अविनाशी है, कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। और स्नेह के साथ साथ क्या है? सहयोगी। क्यों सहयोगी है? क्योंकि जिससे हमारा स्नेह है, अगर हमारा किसी से स्नेह है तो हम उसके कार्य में सहयोगी होते हैं। भगवान का कौन से कार्य में हम सहयोगी हैं? भगवान इस संसार में आया है, कुछ करने आया है और हमारा प्यार उसके साथ है, तो जो कार्य उसका है उसको उसके कार्य में हमें सहयोगी बनना है। उसके किस कार्य में हमें सहयोगी बनना है?
विश्व कल्याण।
वो आया ही है विश्व कल्याण के लिए, तो हमें उसके जो जो कार्य है उस कार्य में सहयोगी बनना है। एक तो विश्व कल्याण के लिए आया है। विश्व कल्याण कैसे?
पावन बनना, पावन
वो आत्माओं को पावन बनाने आया।
पावन बनना बनाना
नहीं, वो किस लिए आया है? उसके कार्य में सहयोग, अर्थात वो जो कार्य उसका है वही कार्य हमारा है। उसका कार्य है पावन बनाना, तो हमारा भी कार्य क्या है फिर? आत्माओं को पावन बनाना, आत्माओं को पावन बनने में सहयोग करना। और किस लिए आया है? वो पढ़ाने के लिए आया है, टीचर बनकर पढ़ाने के लिए आया है। तो हमारा भी कार्य क्या होगा? पढ़ाना। पर हमारे साथ एक एडिशन है, खुद पढ़ना और फिर पढ़ाना। और किस लिए आया है वो? सभी आत्माओं को विकारों से मुक्त करने के लिए, उसी को पावन बनना भी कहेंगे। तो सभी आत्माओं को विकारों से मुक्त करने के उद्देश्य से वो इस धरा पर अवतरित हुआ है। और क्यों आया है वो?
सभी के दुख खत्म,
सभी के दुख और दर्द और पीड़ा और वेदना समाप्त करने, मिटाने, हरि उसको कहा जाता है।
सब पे रहम करना है,
तो सबके दुखों को दूर करना। और किस लिए आया? रहम, रहम दिल कल की मुरली में था, रहम, रहम के संस्कार कल था ना, रहम दिल के संस्कार। तो वो रहम दिल बनकर रहम करने आया है। तो हमें भी जो जो उसका कार्य है वो हमारा कार्य, उसका कार्य हमारे सामने स्पष्ट हो। और किस लिए आया है वो?
मुक्ति और
वो एक ही शब्द बहुत सारे हैं, परंतु उनका बहुत सारे अर्थ समान है, हम अलग अलग अर्थों वाले बताए। जैसे एक तो है निर्विकारी बनाने, पावन बनाने, ये सब एक ही अर्थ है सभी चीजों
का। अनेक धर्मों का विनाश कर,
एक नए धर्म की स्थापना करने है वो। असंख्य जो धर्म इस संसार में व्याप्त है उन सबको विनाश करके, एक दूसरा पॉइंट है ये उसका कार्य। एक तो पतित से पावन बनाना, असंख्य तो दूसरे धर्मों की का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करना। तो वो जो उसका कार्य है वही हमारा कार्य है, इसमें सहयोगी। और किसमें सहयोगी?
देवी झाड़ की कलम लगे,
वो नई नया धर्म, देवी झाड़ एक ही चीज है,
देवी स्वराज्य,
देवी स्वराज्य, नया झाड़
घर ले,
एक घर ले जाने, ये एक सेपरेट कार्य है उसका। सभी आत्माओं को घर ले जाने, पतित से पावन बनाने, निर्विकारी बनाने, ये सब एक कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी नए धर्म की स्थापना करना। थर्ड कैटेगरी वापस ले जाना सबको। और किस लिए आया है? दुख दूर करने आया है, वो भी एक बात है। दुख, पीड़ा, दर्द, रहम दिल बनकर दुख दूर सब करने। हाँ, आत्माओं को अशरीरी बनाए, अतिंद्रिय सुख का अनुभव कराने आया है। तो उसका क्या कार्य है? अतिंद्रिय सुख का अनुभव कराना सभी आत्माओं को, अशरीरी बनाना, आत्मिक स्वरूप में स्थित करना, तो हमारा भी कार्य हो रहा। आत्माओं की थकान साथ ले जाने में आ जाएगा, वो
मनुष्य से
देवता बनाना आ गया, वो नए धर्म की स्थापना में सब कुछ आ गया, मुक्ति मुक्ति घर ले जाने में आ गया, जीवन मुक्ति स्थापना करने में आ गया,
हमें स्वयं की पहचान और अपने
हाँ सत्य ज्ञान देने। किस लिए आया है? सत्य ज्ञान देने, स्वयं की पहचान कराने। उसके कई कर्तव्य है, कोई एक कर्तव्य से नहीं आया। और किस लिए आया है?
सहज राज चार्ज करने के लिए, आत्माओं को चार्ज करने के लिए,
आत्माओं में शक्ति भरने के लिए, चार्ज करने के लिए, पावरफुल बनाने
के लिए, रहस्य खोलने के लिए।
हाँ, और ज्ञान देने में बहुत सारी बातें आ जाती है। फिर जिस दिन हमने डिस्कस की ना राज, वो सारे राज का रहस्य उद्घाटन करने वाला है। हरि जन्मते हेतु अनेक, परम विचित्र एकते एक, ऐसे लिखा हुआ है। हरि जन्म के हेतु अनेक, परम विचित्र एकते एक। श्री राम के जन्म के बारे में रामचरितमानस में इस तरह से लिखा है। तो भगवान को एक ही कार्य करने नहीं आता है, साथ में बहुत सारे कार्य करता है। और किस लिए आया है वो?
जीते ही
मरने
वर्षा सतयुग में आ गया, धर्म में आ गया, जीते जी मरना, वापस ले जाना, उसमें आ गया। और कुछ और भी कार्य है उसका,
आत्माओं को अपने प्यार का अनुभव कराने के लिए,
परमात्मा स्नेह का अनुभव कराने,
जिसके कारण फिर गायन होता रहेगा।
आत्माओं को ऐसे परमात्मा स्नेह का अनुभव कराने कि 5000 साल तक द्वापर से जैसे आत्मा नीचे उतरेगी, उनको वो स्नेह खींचने लगेगा, वो स्नेह उनको खींचेगा, वही स्नेह आकर्षित करता है वो, जिसके वजह से वो न जाने कहाँ कहाँ भटकती है आत्मा, इस धर्म में उस धर्म में, यहाँ वहां उसको ढूंढने की कोशिश करते हो। क्यों ढूंढते हैं हम किसको? जरूर कभी तो उसने प्यार दिया होगा, कभी तो हम उससे मिले होंगे, तो ही तो हमको उसकी याद आती है, फिर सताती है, तो हम उसको वापस वही याद, वही प्यार, वही मिलन हमको चाहिए, और उसकी खोज पुनः स्टार्ट हो जाती है।
उसी से लगता हुआ
सर्व संबंधों का, एक तो प्यार भी हो गया उसमें, सर्व संबंधों का अनुभव, उससे मिलन भी उसमें आ गया, ये सब बहुत सारी बातें आ गई। तो ये सब करने को आता है, प्रकृति को भी कुछ करने आता है, प्रकृति के लिए भी उसके कुछ कर्तव्य है। प्रकृति से ज्यादा संबंध हमारा है, परमात्मा से भी ज्यादा संबंध हमारा है, वो हमें पावन बनाते हैं, और जब हम पावन बन जाते हैं तो प्रकृति स्वतः ही पावन बन जाती है, पुनः सतो प्रधान बन जाती है। तो ये कार्य भी परमात्मा के कार्य है। तो बाबा कहते हैं कि जो स्नेह के साथ साथ सदा सहयोगी है, किस बात में सहयोगी? जो बाप की डायरेक्शन है उसमें सदा सहयोगी, जो जो उसके कार्य वो हमारे कार्य, जो बाप के कर्तव्य वो हमारे कर्तव्य, जो उसका ऑक्यूपेशन वो हमारा ऑक्यूपेशन। कभी मुरली में बाबा ने कहा है, बाप के टाइटल वो बच्चों के समान, जो बाप के टाइटल वो बच्चों के समान, उसके जो भी टाइटल है विश्व कल्याणकारी, जो 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 संसार ने उसको जो दिया वो सब हमारे समान। ब्रह्मा के भी जो जो टाइटल है, कल का वरदान याद है ना,
आदिदेव,
वो आदिदेव, तो हम मास्टर आदिदेव, ईश्वरीय रतन, प्रभु के रतन, जो जो ब्रह्मा के टाइटल वो हमारे टाइटल, जो जो परमात्मा के टाइटल वो हमारे समान, जो जो उसके लिए कहा गया है वो हम भी है, वो भगवान है तो हम, वो गॉड है तो हम, वो अल्लाह है तो हम मास्टर अल्लाह। कहा है कभी बाबन? सदा श्रीमत पर चलने में सहयोगी और सदा सेवाधारी, स्नेह स्नेह है इसके लिए हम उसको सहयोग दे रहे। अगर किसी से हमारा स्नेह ही नहीं है तो क्या हम उसको कभी सहयोग देंगे?
नहीं।
हमारा प्यार कम है उससे, वो जो कार्य करता है हम थोड़ी उसमें, हमारी सहयोगिता उसमें उस कार्य में नहीं होगी, सहभागिता उस कार्य में नहीं होगी। उसी का हम सहयोग करते हैं, सहयोग देते हैं जिससे हमारा स्नेह है, तो उससे हमारा स्नेह है। और ये स्नेह कैसा है? कोई भी शक्ति स्नेह को तोड़ नहीं सकती, इतना अटूट स्नेह है। अगर कोई तोड़ने की कोशिश करे स्नेह को तो क्या हो जाएगा? वो स्नेह और मजबूत होगा। जो ईश्वरीय मार्ग पर निकल पड़ते हैं, अगर उनको कोई रोकता है, रोकने की कोशिश मत करना, रोकने वालों की लगे रहना। अगर आपको लगता है वो वापस आ जाए तो सबसे पहला कर्तव्य उसको रोकना मत, क्योंकि अगर तुमने रोका तो वो और दृढ़ होगा, उसका वैराग्य और बढ़ेगा, उसका जो वैराग्य जो है वो क्या होगा, जिद में परिवर्तन हो जाएगा,
लगन बढ़ेगी,
लगन बढ़ेगी। वो भी है उसमें, कुछ में एक जिद भी आ जाती है, अहंकार भी आ जाता है। इसके लिए अगर घर से कोई निकलता है और कहता है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, तो माँ बाप ने क्या करना चाहिए? जाने देना चाहिए, वापस आ जाएगा। अगर रोका तो कभी नहीं आएगा वापस। जितने सन्यासी संसार में बने हैं वो माँ बाप के रोकने की वजह से ज्यादा बने हैं। परंतु अगर सच्चा वैराग, अगर सच्चा वैराग है तो वो कभी नहीं जाता, रोकेंगे तो और बड़े, वो एसिड टेस्ट जिसको कहते हैं, एसिड टेस्ट ऑफ संन्यास। अगर झूठा वैराग है तो वो चला जाता। मुझे याद है मैं कभी किसी एक आश्रम में था, वहां पर एक नौजवान आया था, एकदम वैरागी, बहुत वैराग उसके चेहरे पर, वैराग इतना वैराग कि उसको संसार में किसी चीज से आसक्ति नहीं थी, भोजन में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। 7 दिन तक तो वो था वहां पर। 7वें दिन उसके माँ बाप आए और आश्रम के जो स्वामी थे, जो मठाधीश, उनसे मिले और उनको बताया, तो वो जितना विरोध करने गए, मतलब उसका वैराग्य बहुत ज्यादा था, परंतु फिर उसके माँ बाप ने, माता और पिता उससे मिले। एक्चुअली उसको किसी से शादी करनी थी पर माँ बाप रोक रहे थे, तो इसके लिए एकदम वैराग आ गया था संसार से। तो माँ बाप ने कहा ठीक है तुम कर लो शादी, तो वैराग खत्म। तो ये जो वैराग है इसको स्मशानी वैराग्य, मरकट, मरकट अर्थात एक शब्द है मरकट वैराग्य, मरकट वैराग्य मतलब बंदर, मतलब जिसमें वो दिखाते हैं ना, वो एक मटका है जिसमें कुछ चने हैं या कुछ है, वो रख देते हैं, तो बंदर आता है उसमें हाथ डालता है और उसमें फंस जाता है, तो उसको पकड़ते हैं, उसको मारते हैं। तो एक बार उसको सीख लिया उसने, तो पर एक बार सीखने के बाद नहीं करना चाहिए वापस, परंतु बाद में उसको वापस चने की याद आती है, वापस हो जाता है और वापस हाथ रखता है। तो वो जो वैराग है वो थोड़े देर के लिए आया हुआ वैराग, स्मशानी वैराग, मरकट वैराग, क्षणिक वैराग, वो थोड़े समय रहता है और फिर चला जाता है। तो ये इस तरह का जो वैराग है वो कभी टिकता नहीं है, परंतु जो सच्चा वैराग है, जैसे महावीर के जीवन में दिखाया हुआ है, वर्धमान महावीर, उसको बचपन से ही वैराग है। उसने अपनी मां से कहा कि मुझे संन्यास लेना है, मां ने कहा नहीं, जब तक मैं हूं नहीं लेना, तो वो शांत हो गया। बड़ा विपरीत किया उसने, अगर कोई दूसरा होता तो झगड़ा करता था, क्योंकि वैरागी व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता है। उसको कोई कहे कि रुक जाओ तो कभी नहीं रुकेगा और उसको वैराग तीव्र होगा। पर यहां दिखाया है उसके जीवन में, उसको उसकी मां से उसने कहा कि मुझे संन्यास लेना, उसकी मां ने कहा नहीं लेना, जब तक मैं हूं तब तक तुमको रुकना है। कई सालों तक वो रुका रहा, फिर उसकी मां की मृत्यु हो गई, फिर उसके भाई और उसकी भाभी और उनके साथ हो रहा, उन्होंने भी उसको जाने नहीं दिया। ऐसे कैसे कोई किसी को जाने देगा? परंतु उसकी मां के मृत्यु के बाद उसका जो जीवन है, जैसे कि जीवंत मृत्यु, वो होते हुए भी है नहीं, वो है पर वहां है ही नहीं। तो उसके भाई को भी लगा भी इसका करे क्या, इससे तो यहां रहने से तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या, तो जाने दो। और तब वो निकलता है, तो ये जो वैराग्य है ये सत्य वैराग्य है, सही वैराग्य है, रियल वैराग्य है, जो किसी चीज की वजह से जाता नहीं है, ये ज्ञान पर आधारित वैराग्य है। एक है बहुत सारी किताबें पढ़ ली सेंसेशनल और फटाफट वैराग आ गया, या जीवन में कुछ आ गया और वैराग आ गया और फिर यहां आ गए, फिर यहां की कुछ बातें देखी और वापस दुनिया में, वो वैराग्य। वैराग्य अर्थात सत्य सही वैराग्य, रियल वैराग्य जो होता है वो ज्ञान से उत्पन्न होता है। संसार असार है, संसार में प्राप्त कुछ नहीं है, इस आधार से जो वैराग्य आता है वो सही। तो यहां बाबा बात कर रहे हैं सेवाओं की, पहले तो स्नेह, फिर दूसरा सहयोग और तीसरी है सेवा। ऐसे नहीं कि सेवा का चांस मिला तो सेवाधारी, सदा सेवाधारी। बाबा सेवाओं के जो अर्थ बताते हैं, और आज तक लोगों ने सेवा के जो अर्थ बताए बहुत अलग है, क्रिश्चियन मिशनरीज के सेवाओं के अर्थ अलग है, सन्यासियों के सेवाओं के अर्थ अलग है, भक्तों के सेवाओं के अर्थ अलग है, जो कर्म योगी है समाज सेवी लोग है उनके सेवाओं के जो अर्थ है वो अलग है, और भगवान जिस अर्थ की सेवा बताते हैं, सेवा का जो अर्थ बताते हैं वो एकदम भिन्न है। ब्राह्मण बनना अर्थात सेवा की स्टेज पर ही रहना। ब्राह्मणों का काम क्या है? सेवा करना। तो नामधारी ब्राह्मण धामा खाने वाले और आप सेवा करने वाले हो, तो हर सेकंड सेवा की स्टेज पर है। ऐसे समझते हो कि जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो, चांस पर सेवा करने वाले हो या सदा सेवा सेवाधारी हो? खाना बनाते भी सेवा करते हो? क्या सेवा करते हो? याद में खाना बनाते हो तो यह सेवा करते हो। कोई भी कार्य करते हो तो याद में रहने से वायुमंडल शुद्ध बनता है, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो याद की वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। सेवाधारी अर्थात हर समय अपने श्रेष्ठ दृष्टि से, कृति से, वृत्ति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो श्रेष्ठ दृष्टि भी सेवा करती है, तो निरंतर सेवाधारी। ब्राह्मण आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती, जैसे जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, जैसे श्वास, जैसे शरीर है ना, तो श्वास के बिना रह नहीं सकता, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास ना चलने पर मूर्छित हो जाते हो, अगर ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं हो तो मूर्छित हो जाती है। ऐसे पक्के सेवाधारी होना, तो जितना स्नेही है उतना सहयोगी और उतना ही सेवाधारी, जितना स्नेही उसी अनुपात में सहयोगी और उसी प्रपोर्शन में सेवाधारी। सेवा का चांस तो बहुत है ना, कि कभी किसको मिलता है, कभी किसको मिलता है। वाणी के सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन कौन सी सेवा सब कर सकते हैं? मनसा सेवा का चांस तो हर समय है ही, हर समय। सबसे पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा। वाणी की सेवा सहज है या मनसा सेवा सहज है? कौन सी सहज है? सबसे सरल तो वाणी से भी, वाणी से भी और सरल कौन सी? स्थूल कर्मणा सेवा सबसे सहज है। एक तो है कर्मणा सेवा, उसके ऊपर है थोड़ी ज्ञान की सेवा, वाणी की सेवा। वाणी की सेवा में भी बहुत सारा, एक है भाषण देना, एक है कोर्स कराना, इसमें बहुत सारा आ जाएगा। उसके भी ऊपर है मनसा सेवा। और कौन कौन सी सेवा है? अपनी धारणाओं से सेवा, प्रैक्टिकल लाइफ से सेवा। कुछ कह नहीं रहे किसको, बोलना भी नहीं आता है, पर जीवन, कोई आया इधर कॉन्फ्रेंस में चार दिन रहा, 100 लोगों को सुना, अच्छे अच्छे भाषण सुने, पर एक छोटा एक सेवाधारी दिख गया किचन में, उससे बात भी नहीं किया, परंतु उसका जीवन देखा और परिवर्तन हो गया। कॉन्फ्रेंस में किसने क्या बोला था सब भूल गए, तालियां तो बहुत बजाई थी पर क्या बात क्या बोला किसने वो कुछ भी याद नहीं। यहाँ और क्या क्या किसने किया, किसने क्या समझाया था, म्यूजियम में किसने क्या समझाया था, ज्ञान क्या सुना था सब भूल गए, याद क्या रहा? बस वो एक सेवाधारी जो कि चुप था, गुप्त था, उसके चेहरे की जो शांति है, उसके उसका जो चलन है, उसके जो बोल थे, किसी और से बोलते हुए हमसे भी नहीं बात की, बस वो देखा और जीवन इधर परिवर्तन हुआ। तो जीवन परिवर्तन का आधार कुछ और है, कोर्स कराने वाले कोई और, पर जिसके वजह से परिवर्तन हुआ वो कोई दूसरा ही था। तो और कौन सी सेवा है हमारी? धन की सेवा, तन की सेवा, मन, मन तो मनसा में आ गया, वृत्ति की सेवा, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि की सेवा, केवल दृष्टि दे रहे आत्माओं को, दूसरों को आत्मा देखना मतलब उनको चार्ज करना, मतलब उनको करंट देना, यह भी सेवा है। तो दृष्टि की, वृत्ति की, मन की, मनसा की, संकल्पों की, धन की, प्रैक्टिकल जीवन की, और भी कोई सेवा है? स्थूल सेवा है, अपने स्किल्स की, अपने स्किल्स को यज्ञ में लगाना, अपनी विशेषताओं को यज्ञ में लगाना। किसी को चित्रकला आता है, किसी को कुछ आती है, हर एक में कोई ना कोई कला है, वो स्किल्स यज्ञ के लिए यूज करना, ये भी बहुत अच्छी सेवा है। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा के लिए पहले क्या करो? अपने को पावरफुल बनाओ। सबसे बड़ी सेवा, सबसे सूक्ष्म सेवा, सबसे ऊंची सेवा और सबसे कठिन, क्योंकि बाकी सब सेवाओं के लिए मनसा को पावरफुल इतना बनाने की जरूरत नहीं है। कोर्स कराने की ऐसी आदत हो गई कि कभी भी उठाकर बोलो कोर्स कराओ, कितनी भी डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, बहुत परेशान है अंदर से, पर सेवा, कोर्स कराने को कहो तो करा देंगे, भाषण करने को कहो तो तैयार है, आदत है ना उसमें, उसमें मनसा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने की जरूरत नहीं है। पर क्या मनसा में कोई बहुत डिस्टर्ब है और विश्व को सकाश देने के लिए कहो तो दे सकता है? क्योंकि यहां एकाग्रता चाहिए, मनसा सेवा के लिए बहुत अच्छी प्यूरिटी चाहिए। जितना व्यक्ति के विचार पवित्र है आत्मा के, उतनी एकाग्रता, और एकाग्रता के आधार से ही फिर मनसा सेवा होगी। बहुत बड़ी लिंक है प्यूरिटी की, सभी एक भी आत्मा के प्रति यदि घृणा का भाव है तो संपूर्ण नहीं बन सकते, अव्यक्त महावाक्य है। इस संसार की किसी एक आत्मा के प्रति भी हमारे मन में घृणा भाव अगर रह गया तो हम संपूर्ण नहीं बन सकते, कितना भी सूक्ष्म भाव है। उसने हमको बहुत दुख दिया, परेशान कर दिया था, ज्ञान योग मुश्किल कर दिया था हमारा, पर उसके प्रति भी अगर घृणा है तो हम वापस नहीं जा सकते। तो बाबा कहते हैं वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते हुए भी कर लेंगे, भाषण करके आ जाएंगे, कोई कोर्स करने वाला आएगा तो भी कोर्स करा देंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। अगर मनसा थोड़ा भी कमजोर है तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। वाणी की कर सकते हो, ऐसा करना नहीं है, लेकिन ऐसे करना नहीं है लेकिन चलता है। तो अब मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार की सेवा करो, तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। बाबा ने तो कहा एक ही साथ तीनों सेवाएं करो, एक साथ निरंतर सेवाधारी बनो, क्योंकि जितनी सेवा करते हो उतना प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। तो सेवाधारी अर्थात प्रत्यक्ष फल खाने वाले सेवाओं भी, ये तो हमने कुछ प्रकार की सेवाएं बताई, कुछ और प्रकार की भी सेवाएं हैं, जैसे निष्काम सेवा और सकाम सेवा, स्वार्थ भावना से की हुई सेवा और निस्वार्थ भावना से की हुई सेवा, एक है गुप्त सेवा, एक है दिखने वाली सेवा, और तीसरी है नहीं, एक है दिखने वाली, एक है गुप्त, और तीसरी दिखाने वाली, दिखावे वाली, वो सबसे बड़ी माया है आज यज्ञ में। हाँ, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, ज्ञानामृत में फोटो तो आ जाए कम से कम, किसी को हमने कुछ दे रहे, राखी बांध रहे, गुलदस्ता दे रहे, कुछ तो हो जाए। तो वो एक है दिखावे वाली सेवा, और कौन सी सेवा है?
समाज सेवा?
नहीं नहीं, उसने यहाँ यहाँ समाज सेवा तो है, यहाँ भाव, किस भाव से की जा रही है सेवा? एक है परमात्मा याद में की हुई सेवा, एक है बिना परमात्मा याद की सेवा, एक है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर की हुई सेवा, एक है त्रिकालदर्शी स्थिति नहीं है वहां पर, एकदर्शी स्थिति है, दोदर्शी स्थिति, एक है साक्षी भाव की सेवा, सेवा कर रहे फिर भी अनासक्त है, साक्षी है, करते हुए भी अनासक्त है, एक में नहीं है। एक है सेवा कर रहे फिर भी उसमें बहुत अच्छी अशरीरीपन की अवस्था भी बीच बीच में, एक में बिल्कुल ही फुल बॉडी कॉन्शियस या फिर वर्क कॉन्शियस जिसको कहते हैं वर्क कॉन्शियसनेस, बस वही याद है दिन भर, मतलब उसमें योग का प्रयोग हो। एक है योग युक्त, एक है माया युक्त सेवा, योग मुक्त और योग युक्त। कर्म तो सेवा तो कर रहे हैं परंतु योग से संपूर्णतः मुक्त है। एक है योग युक्त और एक है योग मुक्त। एक है जो रिजल्ट है उसमें सकाम निष्काम में आ गया वो, कि रिजल्ट में आसक्ति है, मतलब सेवा करते हुए भी इससे क्या होने वाला वही ज्यादा सोच रहे हैं, सेवा का कम सोच रहे हैं, पर इससे जो प्राप्ति होने वाली स्तुति प्रशंसा और वो सब जो होने वाला वही ज्यादा सोच रहे हैं, यहाँ का कम सोच रहे हैं। एक है फुल एकाग्र चित्त होकर, दत्त चित्त होकर की हुई सेवा, एक है मन एकाग्र नहीं है, बुद्धि एकाग्र नहीं है, ऐसी सेवा कर रहे हैं। एक है बड़ा मरमर कर सेवा कर रहे हैं। एक है तन्मयता से, तल्लीनता से सेवा कर रहे हैं, युक्ति होकर, उसके विरोध में साधारण अयुक्ति युक्त सेवा। एक है संपूर्ण समर्पण भाव से की हुई सेवा, एक है बस काम चलाओ सेवा, ड्यूटी समझकर। हाँ, आया है ग्रुप क्या करे, वैसे तो भेज नहीं सकते, भेजेंगे तो कितना बुरा लगता है उनको, नहीं दिखावे वाली, मतलब कोई लोग क्या कहेंगे बाकी लोग यहाँ के, उसमें थोड़ा अपना स्टेटस भी तो मेंटेन करना होता है ना सेवाधारी का, दिखावे वाली सेवा है। एक है रहम दिल से, एक है बेरहमी से, तो कोई सेवा नहीं करेगा। नहीं, कभी कभी करते हैं बेरहमी से करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, अभी थका हुआ आदमी, परंतु जब तक एक घंटा उसको सुना ना देंगे, सारा सात दिन का कोर्स, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका जो होगा वो होगा, उसका भाग्य बने ना बने, मुझे अपना भाग्य बनाना है बस, चाहे कुछ भी हो पूरा उसको ज्ञान सुना के छोड़ेंगे, आत्मा परमात्मा से लेके सब कुछ पूरा ही पूरा, फिर उसका जो होना है हो जाए। तो बाबा कहते हैं सभी, एक है दूसरों को संतुष्ट करने वाली सेवा जिसमें सब संतुष्ट हो जाए, और दूसरी है जिसकी सेवा की वो परेशान हो गए, हम तो संतुष्ट हो गए पर जिनकी हमने सेवाएं की वो दुखी है बहुत, क्या कहे उसको। सभी संतुष्ट आत्माएं हो ना, संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे, संगम युग है ही संतुष्टता का युग, तो सभी संतुष्ट है कि थोड़ी खिटखिट है, ना स्वयं में ना दूसरों के संपर्क में आने में, स्वयं संतुष्ट है लेकिन संपर्क में आने में संतुष्टता, इसमें थोड़ा फर्क है। माला के मन की होना, तो माला कैसे बनती है, संबंध से, अगर दाने का दान, अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला बनेगी, तो माला के मन की है, इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी। जो कहता है मैं संतुष्ट हूं पर कर नहीं सकती हूं, उसके लिए बाबा ने क्या कहा संडे की मुरली, वो उसके योग्यता के, टीचर के योग्यता के विरुद्ध है, क्योंकि सभी परिवार वाले हैं निवृत्ति वाले नहीं, परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। बाप दादा सभी स्थानों को एक दो से आगे ही रखते हैं, ऐसे नहीं फलाना स्थान आगे है दूसरा पीछे, बाप के लिए सब आगे है, चाहे नए चाहे पुराने, लेकिन सब आगे है, और अगर गुप्त है तो सबसे आगे है, अगर कोई स्थान गुप्त है तो बाबा कहते हैं सबसे आगे, जैसे गुप्त दान महादान कहा जाता है, ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी है, नाम आउट नहीं होता है, तो ऐसे नहीं समझो कि पीछे है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी सबसे सदा आगे है, कितनी अच्छी बात कही है। एक है पुरुषार्थ का भी दिखावा, पुरुषार्थ का भी दिखावा करना, गुप्त में इसको समझने के लिए दिखावे से क्या क्या होता है वो समझना होगा। कोई पुरुषार्थ तो कर रहा है, कोई 2 बजे उठकर योग करता है, पर दिन भर जो भी मिलता है उसको पूछते रहता है कितने बजे उठते हो, अच्छा 3 बजे, एकदम मतलब घृणा का भाव है, पता नहीं ये 3 बजे मतलब उसको बहुत ही खराब लगता है, اس کو لگتا ہے کہ کہاں میں 2 بجے اٹھنے والا اور بابا سے میرا 4-5 گھنٹے کا بیٹھا یوگ, اور کہاں یہ 1 گھنٹے کیا انوبھوتی ہوتی ہوگی ان کو. بڑا ہی رحم آتا ہے اس کو اور سب کو بتاتے رہنا. جیسے 18 جنوری جب ادھر تھا تو کئی بھائی نیچے سے آتے تھے یہاں, 2 گھنٹہ یوگ کر کے جاتے تھے کئی لوگ. وہ نیچے سے اوپر روز آنا 18 دن تک بہت اچھی بات ہے, اور یہاں یوگ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے, پر ڈائلوشن کہاں ہو جاتا ہے, جاتے جاتے بہتوں کو بتا کر جاتے ہیں کہ ہم 2 گھنٹہ آئے تھے. ہم روز 2 گھنٹے آتے ہیں, ایک تو ہمارا تو روٹین ہے جب سے 18 جنوری چالو ہوا 1 تاریخ سے ہم روز آتے ہیں. یہ بتانا اس سے کچھ تو ہوتا ہے نقصان, اس میں دکھاوا ہے, اس میں نقصان ہے, آڈمبر ہے, ڈھونگ ہے کہیں نہ کہیں. اس سے وہ یوگ بھی نہیں لگ سکتا, یوگ کرتے ہوئے بھی وہی سنکلپ چلتے ہیں. یوگ تو وہ ہے پریرنا تو دیتے, چلو بہت اچھی بات ہے, پوزیٹو پوائنٹ نکال لیا اس سے. ہم یوگ بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, پر ایک یہ دیکھو جیسے وہ برلا کا مندر ہے ہر جگہ, جب وہ مندر بنا تو نیوز پیپر میں بہت اچھا ایک جوک آیا تھا کہ برلا مندر, برلا پہنچا بھگوان کے پاس, برلا کی مرتیو ہو گئی, برلا پہنچا بھگوان کے پاس, بھگوان نے کہا کیا کیا, تو اس نے کہا مندر بنایا. بھگوان نے کہا کس کا, تو اس نے کہا لکشمی نارائن کا. تو بھگوان نے پوچھا نام کیا دیا, تو برلا ٹیمپل. مندر ہے کس کا, لکشمی نارائن کا, اور نام کس کا دیا, برلا ٹیمپل. جہاں دیکھو وہاں برلا ٹیمپل, جو بھی آتا ہے سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے, برلا ٹیمپل, برلا ٹیمپل. جو بھی دیکھے گا پونیہ نشٹ ہو رہے نا, مندر کس کا اور نام کس کا. جو بھی کہیں گفٹ دیتا ہے سب سے پہلے تو وہ کام کرتے, وہ پلیٹ چاہیے سب سے پہلے. کوئی بھی کمرہ دیتا ہے, اسکول دیتا ہے, وہ رہتا ہی ہے وہاں لکھا, یہ کمرہ کس نے دیا, اس سے تو پونیہ نشٹ ہوتے ہیں. ویسے ہی جیسے وہ سیواؤں کے لیے ہے, دان کے لیے ہے, گپت دان کا مہتو ہے, ویسے یہاں پر بھی جتنا پرشارتھ گپت ہے. بابا نے کیا کہا, سب سے آگے کون ہے جن کا نام آؤٹ نہیں ہے, وہ سوئم آؤٹ نہ کرے, ویسے اگر ہو جائے تو وہ اور بات ہے. گپت سیوا دھاری سدا ہی آگے, ویسے سیواؤں میں بھی گپت سیوا سدا آگے, جو دکھاوا نہیں کرتے. ایک ہے دکھاوا کرنے والے, آگے آگے کرنے والے. کوئی لوگ تو یہاں چمن بھائی بھرتی اس لیے ہوئے آگے آگے کرنے کے لیے, بربر ہے نا, دیکھا ہے سب نے. تو سبھی کیا یاد کریں گے کون ہو, نرنتر سیوا تھری, سدا سیوا کی سٹیج پر پارٹ بجا رہے ہو, گھر میں نہیں ہو, کہاں ہو, سیوا پر ہو, سینٹر پر نہیں سٹیج پر ہو. تو سٹیج پر الرٹ رہتے ہیں, گھر میں جائیں گے تو الرٹ نہیں رہیں گے, البیلے ہو جائیں گے, سٹیج پر جائیں گے تو الرٹ ہوں گے. تو یہ سمجھو کہ میں کہاں ہوں, سیوا کی سٹیج پر ہوں. تو جو تو سدا سیوا کی سٹیج پر ہے, اس مرتی سے سدا الرٹ رہنا. اچھا تو کیا سنا, ایک تو سنیہ, اویناشی سنیہ کبھی ٹوٹے نہ, جتنا سنیہی اتنا ہی سہیوگی, جو اس کے کرتویہ ہے وہ ہمارے کرتویہ ہے, اس کے لیے اس کے ہر کرتویہ میں سہیوگی, اور جتنا سہیوگی اتنا ہی سدا سیوا داری. سدا سیوا داری ارتھات نرنتر سیوا داری ارتھات ہر سمے اپنے آپ کو سیوا کی سٹیج پر سمجھنا. اور سب سے بڑی سیوا کون سی ہے, منسا سیوا, اور سب سے بڑی سیوا کون سی ہے, گپت سیوا. یہ دو باتیں, منسا اور گپت. بابا نے وہاں پہ ایک پوائنٹ کہا کہ منسا سیوا کے لیے پاورفل بننا ہے, تو ہم اس پر ایک چنتن کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو پاورفل کیسے بنائیں. کیول 5 پوائنٹ, 5 ہی پوائنٹ لکھنا ہے, بہت زیادہ نہیں. سوئم کو پاورفل کیسے بنائیں, اونلی 5 پوائنٹس, بہت ہی شکتیشالی اوپر. تو یہ آج کا ہوم ورک. اچھا, ہوم شانتی.